राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव और विकास। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे जागृत हुई, परंतु यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसका उद्भव तथा विकास फ्रांस की क्रांति तथा प्रारंभ की गई प्रजातंत्र तथा राष्ट्रवाद की धारणाओं के आधार पर हुआ, तथा अंग्रेजों की साम्राज्यवादियों की आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों ने इस राष्ट्रवाद के उभार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि धार्मिक तथा विचारधारा की एकता की चेतना मध्ययुगीन भागन में भारत में भी थी, परंतु यह आर्थिक तथा राजनीतिक एकता की चेतना थी जिसने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी में उदित हुए राष्ट्रीय चेतना को बाल गंगाधर तिलक तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक बनते हुए राष्ट्र की संज्ञा दी। भारत में राष्ट्रीयता के विकास की प्रक्रिया बहुत जटिल तथा बहुमुखी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार यूरोपीय देशों के पूंजीवाद से पूर्ववर्ती काल के समाजों से भिन्न था। भारत विभिन्न भाषाओं, धर्म, समुदाय तथा बहुत बड़ी आबादी वाला देश। भारतीय राष्ट्रवाद का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसका जन्म राजनीतिक पराधीनता के दिनों में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अपने हित में भारतीय समाज में आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए, केंद्रीकृत राजव्यवस्था की स्थापना, आधुनिक शिक्षा पद्धति, आवागमन के नए साधन विकसित किए तथा इसी प्रकार के अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। इसके परिणाम स्वरूप नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ और अपने आप में कई सामाजिक शक्तियों का उदय संभव हो सका। ये नए सामाजिक तत्व अपनी राष्ट्रीयता के विकास की आधारशिला ही नहीं, उसके लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म तथा विकास के जिन परिस्थितियों में हुआ वे निम्न कारण हैं। पहला, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का दोहन किया तथा यहाँ के परंपरागत लघु, कुटीर तथा हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। इससे भारतीय आबादी का एक बड़ा भाग रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। अंग्रेजों ने भारत को अपनी व्यापारिक मंडी बना दी। भारत से कच्चे माल को मनमाने दाम पर खरीदकर तैयार माल भारतीय बाजार में बेचना, जिससे ब्रिटिशों को दोहरा लाभ तथा भारतीयों की दोहरी हानि हो रही थी। दूसरी तरफ भारत की आर्थिक नीति ब्रिटेन की नीति की पिछलग्गु बन गई। लॉर्ड लिटल के काल में सूती वस्त्र पर से आयात कर हटाकर रही सही भारतीय सूती वस्त्रों का भी गला घोंट दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार, उसके कर्मचारियों को वेतन, किसी भी अतिथियों के आने पर अनावश्यक खर्च को भी भारत सरकार ही वहन करती थी। यहाँ तक कि 1857 की क्रांति के दमन में हुए खर्च तथा अन्य मोर्चों पर युद्ध के खर्च के लिए भारत सरकार कितना सेना रखती थी, इसका खर्च इसके सरकार को उठाना पड़ता था। दूसरी तरफ भारत में अकाल की बढ़ती समस्या से जन समुदाय परेशान था। अतः ऐसी परिस्थितियां जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासक भारत के संसाधनों को ऐस आराम कर रहे थे तथा भारतीय जनता दाने दाने को मोहताज हो रही थी, ने भारतवासियों के मन में एक चेतना का उदय हो जो आगे चलकर राष्ट्रवादी व्यापक आंदोलन में रूपांतरित हो गया। दूसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सन 1835 में ट्रिविलियन मैकाले तथा विलियम बेंटिक ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली भारत में लागू किया, जिसका उद्देश्य भारतीय अंग्रेज पैदा करना था, अर्थात वैसे व्यक्ति जो भारतीयों के बीच का हो, भारतीय परंपरा को मानने वाला हो, किंतु उसकी सोच, विचारधारा तथा आदर्श अंग्रेजों के अनुकूल हो। इसी उद्देश्य में वे कुछ हद तक सफल हुए, परंतु कालांतर में उच्च शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी मिल गई, जिसके माध्यम से वे विविध भाषी प्रांतों के व्यक्तियों से विचार विमर्श, सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा अपने विचार सोच को जनता में प्रचारित करते थे, जिससे इन वर्गों में सरकार के नीतियों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसकी परिणति एक संगठित राष्ट्रीयता के भाव की उत्पत्ति में हुई। तीसरा, विभिन्न भारतीय भाषाओं का विकास। 19वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। उर्दू उत्तरी भारत की सरकारी कार्यकारी भाषा बन गई। हिंदी तथा बंगला भाषाओं का भी विकास हुआ। इससे विचारक अपनी बातों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करवाकर जन समुदाय तक पहुंचाते थे, जिससे जनता अपने अधिकारों तथा अंग्रेजों के द्वारा अपने प्रति किए जा रहे सौतेलेपन को समझ रही थी। बंकिम चटर्जी ने बंगला भाषा में आनंदमन लिखा, जिसे जन समुदाय को काफी प्रभावित किया। इसी तरह दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत भारती आदि ग्रंथों ने भारतीयों के मन को झकझोर दिया था, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चौथा, सुधारवादी आंदोलनों का विस्तार। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दर्शकों में राजाराम मोहन राय, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती आदि ने सामाजिक सुधार के लिए जन समुदाय को जागृत करने के प्रयास को आरंभ किया। उनका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से भारतीयों को एक करना तथा देश प्रेम की भावना को जागृत करना था। रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि ने भारत के समृद्ध सांस्कृतिक समुदाय में विश्वास उत्पन्न किया। इस प्रकार इस सुधार आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। इन नवीन आंदोलनों ने विभिन्न क्षेत्र तथा संप्रदायों को एक मंच प्रदान किया। एक बार जब ये लोग धार्मिक रूप से एकत्रित हो गए, तो अगली बार इन्हें अगला चरण स्वाभाविक रूप से राजनीतिक उद्देश्य के लिए एकत्रित होना था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिल सके। छठा, समाचार पत्र, साहित्य, प्रेस इत्यादि की भूमिका। भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित होने लगे, जिससे साहित्य सस्ते में उपलब्ध होने लगा। धीरे धीरे भारतीयों ने खुद के प्रेस स्थापित किया था। उनमें ब्रिटिश सरकार की नीतियां, प्रावधानों, विधान परिषद की कार्यवाहियों तथा उनमें लिए गए निर्णय आदि को प्रकाशित करने के साथ साथ विभिन्न विचार भी प्रकाशित होते थे। भारतीय समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवादियों ने जनता में प्रतिनिधि सरकार, स्वशासन, जनतांत्रिक संस्थाओं, स्वदेशी स्वराज्य तथा स्वतंत्रता की भावना को लोकप्रिय बनाया। इन राष्ट्रवादियों ने भारतीय प्रशासन के दमनकारी नीतियों को समाचार पत्र के माध्यम से लगातार आलोचना की। छठा, भारत का राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजों ने समय समय भारतीय प्रशासन को एक ऐसे प्रशासन में ढाल दिया जो अत्यधिक केंद्रीकृत था और इसके प्रभाव दूर दूर तक देश के प्रत्येक कोने में अनुभव किए गए। पहली बार संपूर्ण देश में एक समान कानून संहिता, भारतीय दंड संहिता लागू की गई। प्रशासनिक सुविधा के लिए सादे अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए देश में संचार व्यवस्था को सुधारा गया। सड़कों तथा रेल यातायात का जाल बिछ गया। एक दक्ष डाकतार विभाग ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरो दिया, जिससे भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को अपने विचार एक दूसरे तथा जन सामान्य तक पहुंचाने में अत्यधिक आसानी हुई तथा जनता में एक राजनीतिक भावना का संचार हुआ। आठवां, मध्यम वर्ग का उदय तथा यूरोपीय गतिविधियों का प्रभाव। 19वीं सदी ने शिक्षा में सुधार तथा प्रशासनिक सुधारों ने एक सुशिक्षित विचारवान मध्यम वर्ग का उदय हुआ। उनमें से कुछ वैसे भी थे जो इंग्लैंड में रहकर पढ़े थे। उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिश जनता को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हें सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, परंतु इसके ठीक विपरीत भारतीय अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अतः इन नवविदित मध्यम वर्ग ने जनता के उनके मनोभावों को उभारा तथा उन्हें स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, यूनान, इटली तथा आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रेरणा मिल रही थी, जिसे उन्होंने व्यक्त किए तथा भारतीय राष्ट्रवाद को उभारने में मदद की। नस्लीय भेद। नौवां, नस्लीय भेद की भावना ने भारतीयों को एक राष्ट्रीय रूप में एक होने को प्रेरित किया। अंग्रेज केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि समस्त यूरोपीय जातियों को एशियाई से ऊंचा मानते थे। भिन्न राजनीतिक परिस्थितियां, रंग, भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय लोगों के जीवन तथा उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। एक ही नौकरी के लिए भारतीयों को कम था, यूरोपियों को अधिक वेतन दिया जाता था। भारतीय दूसरी श्रेणी के रेल के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते थे तथा कोई भारतीय जज यूरोपियों के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था। ब्रिटिश सरकारों के ये भेदभाव की नीतियां भारतीयों में ऑरिजिन करती तथा वे भी अंग्रेजों से नफरत करने लगे। फलता उनमें भारतीयपन के प्रति तथा समान अधिकार पाने को लेकर एक नई जागृति आई, जिसने एक राष्ट्रीय आंदोलन को उभारा। दसवां, लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। वास्तव में लिटन ने कार्यकाल को हम विदेशी शासकों के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए उत्प्रेरक तत्व कह सकते हैं। लिटन ने सूती वस्तुओं पर आयात कर कम कर दी, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार भारतीय जनपद परीक्षा के आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। उद्देश्य स्पष्ट था, भारतीयों को इस परीक्षा से पूर्णतया दूर रखा जाए, क्योंकि परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इसी प्रकार लिटन ने 1876 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम तथा भारतीय सत्य अधिनियम पारित किया। ये दोनों अधिनियम इतने अप्रिय थे कि देश में विरोध की लहर पैदा हो गई और स्वतः ही एक राष्ट्रीय विचारधारा का ज्वालामुखी विस्फोट होने के कगार पर पहुंच गया। 11वां, इल्बर्ट विल विवाद। 1883-84 में इल्बर्ट विल विवाद ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को चरम परिणति दी। हुआयों की रिपन सरकार ने भेदभाव वाली न्यायिक प्रणालियां, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन से संबंधित मामले निपटाने का अधिकार नहीं था, को समाप्त करने का प्रयास किया। एक भारतीय न्यायाधीश श्री बिहारी लाल गुप्त के सलाह से विधि अधिकारी श्री इल्बर्ट ने रिपन से परामर्श कर इस संबंध में एक प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा। इस परिषद के विरोध में सारे यूरोपियन एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कड़े तेवर अख्तियार किए। रिपन के विरुद्ध असौवनीय टिप्पणी की तथा उनका एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा था। इससे भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को गहरी ठेस लगी। उन्हें अपनी हीनता का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि जहां यूरोपियन लोगों के विशेषाधिकार का मामला है, उन्हें न्याय नहीं मिल सकता, तथा जिस प्रकार यूरोपियनों ने संगठित होकर इल्बर्ट बिल का विरोध किया, उससे भारतीयों ने भी देखा कि संगठित आंदोलन का क्या परिणाम हो सकता था, तथा कालांतर में उन्होंने भी संगठित होकर राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। इस प्रकार हम देखते थे कि 19वीं शताब्दी में विभिन्न भारतीयों के प्रयास से तथा ब्रिटिश सरकार के भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, जिससे प्रेस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में राजनीतिक आंदोलन की गति कभी भी ढीली पड़ सकती थी, परंतु भारतीय समाचार पत्रों ने अविकल रूप से विदेशी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन को बनाए रखा। भारतीय समाचार पत्रों ने वास्तव में चौथे सदन की भूमिका निभाई तथा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में एक स्मरणीय योगदान दिया। यह रिकॉर्डिंग पिंगेश कुमार के द्वारा दिए प्रथम वर्षित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बीएल ग्रोवर और यशपाल की पुस्तक से सुजीत कुमार हेतु के लिए की गई है।